नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद धर्मेंद्र।
आईपीएल के मुकाबले तो प्रगति पर हैं ही, लेकिन ISSF विश्व कप में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है, दूसरे स्थान पर रही है और तीरंदाजी विश्व कप से भी अच्छी खबर है। धीरज बोम्बा देवरा, अतानु दास और तरणदीप राय की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है।
बिल्कुल, और वो भी तब जबकि धीरज काफी लंबे सफर के बाद, वीसा नहीं मिलने के कारण काफी परेशान रहने के बाद वहां पहुंचे थे, और वैसे में पदक जीतना बड़ी बात है।
हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर भी और तमाम दूसरी खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। ब्यूनस आयर्स में ISSF विश्व कप में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही। अमेरिका में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में धीरज बोम्बा देवरा, अतानु दास और तरणदीप रॉय की पुरुष रिकर्व टीम फाइनल में पहुंची। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी और मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और अमेरिका के बेन शेल्टन की जोड़ी पराजित। तो शुरुआत शूटिंग से। ब्यूनस आयर्स में आयोजित साल के पहले ISSF विश्व कप में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही। चीन ने पहला स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
राइफल, पिस्टल और शॉटगन निशानेबाजों के लिए अंतिम स्पर्धा में लक्ष्य शेरॉन और नीरो की युवा ट्रैप मिक्स टीम एक अंक से पदक से चूक गई। फिर भी भारतीय टीम को दूसरा स्थान मिला। कल सुरुचि और सौरभ चौधरी की मिक्स टीम ने एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था, जिससे भारत की कुल पदकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई थी। इसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य शामिल थे। इससे टीम दूसरे स्थान पर पहुंच गई। अंतिम दिन मिक्स टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में चीन ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया, जिससे वे 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। भारत के लिए सिफत कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और विजयवीर सिद्धू ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। सिद्धू अपनी स्पर्धा में ISSF विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। युवा पेरिस ओलंपियन सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता। वहीं चैन सिंह ने अपना पहला व्यक्तिगत ISSF विश्व कप पदक जीता। एशियाई खेलों और युवा ओलंपिक खेलों के पूर्व चैंपियन सौरभ चौधरी ने भी 2 साल के अंतराल के बाद ISSF विश्व कप पदक जीता। टीम के सबसे अनुभवी सदस्य जोरावर सिंह संधू पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे। अब टीम पेरू के लीमा जाएगी, जहां 15 अप्रैल से संयुक्त ISSF विश्व कप का दूसरा चरण शुरू होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
अगर इस पदक विजेताओं की लिस्ट में देखते हैं, ऐसे चेहरे इसमें नजर नहीं आते जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ कमाल किया हो। यानी ये जो चेहरे हैं ये बिल्कुल नए से चेहरे दिख रहे हैं। ये एक उस परंपरा की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाने वाली सीढ़ी के रूप में दिखाई दे रही है। ये
बिल्कुल जो भारतीय निशानेबाजों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत एथेंस में हुई थी जब राघवेंद्र राठौर ने जीता था रजत पदक, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार एक पूरी पीढ़ी चली आ रही है। उसमें जब नए नाम आते हैं, नए चेहरे आते हैं और विश्व मंच पर जाकर पदक जीतते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि भारत में निशानेबाजों के आका के लिए आने वाला समय बहुत ही एक सुनहरा काल होगा। लेकिन उससे भी जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि जब आप सौरभ और सुरुचि के पदक की ओर देखें, तो सौरभ 2 वर्षों के अंतराल के बाद किसी विश्व स्तर की चैंपियनशिप में उतरे थे और भले ही वो स्वर्ण पदक न प्राप्त कर पाए हों, लेकिन पदक मंच तक पहुंचना उनके लिए ही एक बहुत बड़ी बात है।
और बात करें तीरंदाजी की, तो विश्व कप के पहले चरण में धीरज बोम्बा देवरा, अतानु दास और तरणदीप रॉय की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम फाइनल में पहुंच गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा में तीनों ने कल रात सेमीफाइनल में स्पेन को 6-2 से हराया। रविवार शाम को फाइनल में भारतीय तिकड़ी का सामना चीन की टीम से होगा। इससे पहले भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया पर 6-2 से जीत हासिल की थी। शूटिंग में हम बात करते हैं कि हमारी जो है काफी मजबूत टीम होती है, पदक की दावेदार होती है। तीरंदाजी भी एक हमारा पारंपरिक खेल है, लेकिन इसमें अगर पदकों की बात करें तो ओलंपिक में बहुत कुछ हमारे हाथ है नहीं, लेकिन हमारे जो तीरंदाज हैं वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इन मौके पर चूक जाते हैं।
बिल्कुल ऐसा है कि पहले तो ये कहा जाता था कि जो बिग मैच टेम्परामेंट होता है, जब ओलंपिक जैसे जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं, विश्व स्तर की प्रतियोगिताएं, तो हमारे जो तीरंदाज हैं वहां जाकर वो चूकने लगते हैं। और इसकी कहानी शुरू हुई थी सन 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक से, जब लिम्बा राम नाम का वो तीरंदाज, जिससे बहुत उम्मीदें थी कि वो जाकर वहां कुछ ना कुछ अनोखा करके दिखाएगा, बाद में वो कोच भी बने भारतीय टीम के। मगर अभी जो आप देख रहे हैं, भारतीय टीम पांचवी वरीयता प्राप्त थी जब वो अमेरिका में गई, और वहां जाकर तरुणदीप राय, अतनु दास और धीरज, इन्होंने जिस तरह से खेल का प्रदर्शन किया, और इससे पहले भी जो भारतीय तीरंदाजों ने प्रदर्शन किया है, तो पदक नहीं जीतने वाली जो एक जिंक्स है, कह लीजिए कि अजीब सी चीज है जो भारतीय तीरंदाज नहीं जीत पाते हैं, उसको कहीं ना कहीं इससे काफी झटका लगा है, और उम्मीद है कि यहां से भारतीय टीम पदक लेकर लौटेगी।
और बात अब टेनिस की, मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और अमेरिका की बेन शेल्टन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। बोपन्ना और शेल्टन को फ्रांस के मैनुअल गुइनार्ड और मोनाको के रोमेन अर्नेंडो की जोड़ी ने 2-6, 6-4, 7-10 से हराया। इससे पहले 45 वर्षीय बोपन्ना और 22 वर्षीय शेल्टन ने प्री क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त इतालवी जोड़ी सिमोन बोलेली और एंड्रिया वोवसोरी को हराया था। क्वार्टर फाइनल में भरे हार गए हों बोपन्ना, लेकिन 45 साल की उम्र और प्री क्वार्टर फाइनल में तीसरी सीड के ऊपर जीत, क्या कहेंगे?
देखिए, 45 वर्ष एक महीने की उम्र में एक मैच जीतने वाले एटीपी मास्टर्स में वो सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं
जी।
और इससे ये लगता है कि उनका जो दमखम है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि ये मोंटे कार्लो उन्होंने 2017 में जीता था, 7 साल पहले उन्होंने 8 साल पहले प्रतियोगिता जीती थी, उसके बाद कई बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी उनकी कि इस उम्र में भी जिस पूरे जोशो खरोश के साथ वो खेलते हैं, और अभी भी वो ऐसा नहीं लगता कि वो खेल को अलविदा कहने के लिए तैयार है।
चीन के निंगबो में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उन्हें हांगकांग के तेंग चुन मन और सी यिंग स्यूत की जोड़ी ने 22-20, 21-13 से पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। निराशाजनक खबर है, क्योंकि बैडमिंटन के कोर्ट से काफी लंबे समय से अच्छी खबर नहीं आ रही।
बिल्कुल, और देखिए कि कल जिस तरह से पीवी सिंधु हारी थी और पहले ही दिन लक्ष्य हारे थे और उसके बाद प्रणय हारे थे, तो इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम में नई जान डालने की कोशिश करनी होगी बैडमिंटन टीम में, क्योंकि जब सुधीर मानकप के खेल शुरू होंगे और अगर प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का नहीं सुधरा, तो एक जो तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला हैं, इनसे उम्मीद थी कि मिक्स डबल्स में ये कुछ कर दिखाएंगे, और अच्छा खेला भी उन्होंने। शुरुआत में उन्होंने 7-0 की बढ़त ले ली थी, बाद में वो पिछड़ गए, लेकिन कहना होगा कि भारतीय बैडमिंटन में नई जान फूंकने की जरूरत है।
और बात अब क्रिकेट की, आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जारी है। कोलकाता की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है और चेन्नई की हालत अच्छी नहीं है। जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 14वां ओवर चल रहा है, 6 विकेट गिर गए हैं और सिर्फ 71 रन स्कोर बोर्ड पर। महेंद्र सिंह धोनी प्रतियोगिता के शेष मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ के स्थान पर चेन्नई की टीम की कप्तानी करेंगे। कोहनी में चोट के कारण गायकवाड़ आईपीएल से बाहर हो गए। चेन्नई के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि पहला मैच अगर देखें मुंबई से जीत, उसके बाद लगातार हार पे हार, और अब कप्तान भी पूरे टूर्नामेंट से बाहर।
और अपने ही घर में जब लगातार आप हारते रहते हैं और हार की हैट्रिक की ओर जब आपकी टीम बढ़ रही हो, तो एक उम्मीद की किरण जो टिमटिमाती हुई नजर आ रही थी इनको, इन्होंने सोचा कि वो पारस पत्थर जिसी को छू देता है सोना हो जाता है, वो मिडास टच वाला सोनी अगर आएगा तो कुछ ना कुछ कर दिखाएगा, लेकिन आज नहीं चल रही। और सब मजे की बात यह है कि जो ओपनर्स इनके थे रचिन रविंद्र, शुरू के खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहे थे कॉनवे रविंद्र, वो भी नहीं चल पाए, और मध्य वर्ग बिल्कुल डगमगा रहा है। ऐसा लगता है कि मध्य जो क्रम है वो मध्य क्रम तो खेल ही नहीं पा रहा है, तो चेन्नई के लिए बहुत अच्छी हालत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैच चल रहा है, यहां अगर 150 का आंकड़ा नहीं पार करती है चेन्नई की टीम, तो बहुत मुश्किल होगी इसके लिए।
और आईपीएल में कल दो मैच खेले जाएंगे। लखनऊ में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बीच दिलचस्प संघर्ष देखने को मिल सकता है। लखनऊ की भीषण गर्मी में इन दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। गुजरात टाइटंस ने लगातार 4 मैच जीते हैं और वह नेट रन रेट बेहतर होने के कारण दिल्ली कैपिटल्स से ऊपर पहले स्थान पर है। इन दोनों टीम के समान 8 अंक हैं। उधर पहले मैच में धमाकेदार दर्शन करने के बाद जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच में दमदार वापसी करने के लिए बेताब होगी। पिछले साल के उपविजेता सनराइजर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पहले मैच में 286 रन बनाकर 44 रन से शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद उसके बल्लेबाज कुंद पड़ गए, जिसका असर परिणाम पर भी साफ देखने को मिल रहा है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स 4 मैच में 6 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैच में 2 अंक लेकर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
और अब बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल के फाइनल में कल मोहन बागान सुपर जायंट्स का सामना रेड हॉट ब्लूज कहे जाने वाले बेंगलुरु एफसी से होगा। यह मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा।
मोहन बागान सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान में बेंगलोर एफसी के खिलाफ ऐतिहासिक घरेलू डबल हासिल करना चाहेगा। मैरिनियर्स अपने शानदार सत्र का समापन खिताबी जीत के साथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जोस मोलिना की मोहन बागान ने नियमित सत्र से लेकर आईएसएल प्लेऑफ तक जीत की लय कायम रखी है। घरेलू मैदान पर जमशेदपुर एफसी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद मैरिनियर्स फाइनल में पहुंचे हैं। उसने पहले भी आईएसएल फाइनल में ब्लूज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। 2022-23 फाइनल इन्हीं दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था, जिनमें मोहन बागान ने पेनल्टी पर जीत हासिल की थी। उधर बेंगलुरु एफसी ने इस सीजन में आईएसएल प्लेऑफ में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और कभी हार ना मानने वाला रवैया दिखाया है। दोनों टीमों के बीच आईएसएल में अब तक कुल 13 मुकाबले हुए हैं। इनमें से मोहन बागान ने 10 में जीत हासिल की है, जबकि बेंगलुरु एफसी को सिर्फ 2 में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। ऐसे में घरेलू दर्शकों के समर्थक और अपने प्रदर्शन पिछले रिकॉर्ड के आधार पर मोहन बागान का पड़ा भारी है। हालांकि बेंगलुरु एफसी भी कोई उलटफेर कर देने में सक्षम है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
यानी घरेलू दर्शकों का साथ, परिस्थितियां अनुकूल और रिकॉर्ड भी ये कह रहे हैं कि मोहन बागान का पलड़ा भारी है, लेकिन आपके अनुमान से क्या होने वाला है?
और बेंगलुरु एफसी ने ये कहा है कि हमारी जीत तय है, तो इस तरह से जब दो टीमें कांटे की टक्कर में रहती हैं तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल सबसे अच्छी बात तो हेड कोच जोस मोलिना ने कही है। उन्होंने कहा है कि अतीत में क्या हुआ इससे मुझे कोई मतलब नहीं
जी।
मैं पुराने रिकॉर्ड देखकर अपनी टीम को आगे बढ़ा नहीं रहा हूं। और उधर स्पेनिश कोच जो हेड कोच गेराल्ड जारागोजा हैं, उन्होंने अपनी टीम के बारे में कहा है कि कोलकाता तुम्हारे दूसरे घर जैसा है, हम तो यहां डूरंड कप भी खेलने आए हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे यहीं पैदा हुए हैं, यहीं खेले हैं, तो जो होम टीम होम ग्राउंड एडवांटेज है उसका फायदा कितना मोहन बागान उठा पाते हैं। मगर उनके अगर आप देखें कुल मिलाकर उनका फॉर्म बहुत अच्छा है, और अभी तक जो आप अगर नजर डालें तो मनवीर सिंह जो उनके स्टार हैं वो रिकॉर्ड 5वीं बार आईएसएल फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा प्लेऑफ मुकाबले खेलने के मामले में वे पहले स्थान पर हैं। तो अनुभव और युवा दोनों का उसमें अद्भुत मिश्रण है और टीम दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी।
फुटबॉल से एक और खबर। कल्याणी में ईस्ट बंगाल की टीम ने भारतीय फुटबॉल में 21 साल बाद आज लीग खिताब अपने नाम किया। ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने पिछले चैंपियन ओडिशा एफसी पर 1-0 की जीत के साथ इंडियन वुमेन्स लीग ट्रॉफी पर कब्जा किया। विजेता टीम के लिए सौम्या गुगलोथ ने 67वें मिनट में विजयी गोल किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने आज बताया कि भारत ने महाद्वीप के शीर्ष स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशियाई कप 2031 की मेजबानी के लिए दिलचस्पी का प्रस्ताव पेश किया है। और आयरलैंड के कार्लो में विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी अपने ही देश के श्री कृष्णा सूरी को 7-5 से हराकर WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो मलय नीरव जी, स्टूडियो में आने के लिए बातचीत के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद
दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।